प्रिय श्रोताओ नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं जिसका लेखक पौलुस है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सब के जीवन में दिया है, ताकि हम दूर में रह करके भी रेडियो के माध्यम से आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आज जब हम दूसरे तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं समझ सकें, उसे ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से अपने लोगों की रक्षा करें। हम विनती करते हैं उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, चिंता और दबाव में है, तनाव में है, पिताजी आप उन्हें भी अपनी शांति और चंगाई प्रदान करें। इस समय फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हम इन दिनों दूसरे तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 1 उसके 6 से 18 पद तक देखेंगे। पौलुस तिमुथियुस से बहुत प्रेम करता था और तिमुथियुस भी पौलुस से बहुत प्रेम करता था और पौलुस के बंदी बनाए जाने के कारण वह रोता था, परंतु पौलुस उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। पौलुस ने तिमुथियुस पर हाथ रखे थे, इसका अर्थ था कि तिमुथियुस पौलुस का सहभागी हो गया, वह उसके साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। मेरे विचार में पौलुस की इच्छा थी कि उसकी चद्दर तिमुथियुस पर गिरे। वह पौलुस के मन में बसा हुआ था। बंदीगृह से भी पौलुस उसके विषय में लिखता है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मेरे प्रियो, यही एकमात्र मनुष्य था जो पौलुस की शिक्षा और उसके प्रचार को आगे बढ़ा सकता था और यही कारण था कि पौलुस ने उसे अपना सहभागी बनाया था। वे प्रभु की सेवा में एक साथ थे। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि पौलुस तिमुथियुस से कहता है, तू परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे। उसे वरदान प्राप्त था और पौलुस उसे प्रज्वलित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इससे आप क्या समझते हैं? मैं सोचता हूं कि पौलुस इफिसुस में तिमोथियस के बारे में चिंतित था, क्योंकि वहां पर डायना का मंदिर था और वह नगर रोमी साम्राज्य में पाप का केंद्र था। पौलुस वहां 3 वर्ष रहा था और वह वहां की परीक्षाओं और प्रलोभनों से परिचित था। मैं सोचता हूं कि पौलुस के मन में शंका थी कि कहीं तिमोथियस परमेश्वर की संपूर्ण सम्मति की शिक्षा देने से ना चूक जाए। हम इससे युवक के लिए पौलुस की चिंता को देखते हैं। पौलुस उसे प्रिय पुत्र तिमोथियस कहता है, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। दूसरा तिमोथियस की पत्री 1:7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ भय का उचित अनुवाद होगा कायरता। हम में से अनेकों ने इसका गलत अनुवाद किया है, मैंने भी किया है। मुझे रेल यात्रा अच्छी नहीं लगती थी, परंतु मुझे विवश होकर रेल यात्रा करना होता है कि अपने वचन से चूक ना जाऊं। आरंभ में तो मैं बहुत डरता था और रेल यात्रा के बाद स्वयं को झिड़कता भी था। मैं अपने भय से संघर्ष करता रहता था। मेरे मित्रों, भय तो स्वाभाविक है और अच्छा है। उदाहरण के लिए, मैं शेर से डरता हूं। यदि सड़क पर एक शेर खुली घूम रहा हो तो मैं तुरंत छिपने का स्थान खोजूंगा। अतः भय अच्छा है। हम में से अनेकों को ऊंचाई से डर लगता है और हम हवाई यात्रा करने से डरते हैं। मैंने इसके बारे में प्रार्थना की, परंतु समझ नहीं पाया कि परमेश्वर ने मुझ में से भय दूर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां तो मैं पढ़ता हूं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परंतु यहां पौलुस अच्छे भय की नहीं कायरता की बात कर रहा है। परमेश्वर ने हमें कायरता की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे मित्रों, यहां पर संयम अर्थात अनुशासन, दूसरे शब्दों में परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि मसीही जीवन का प्रतिमान पराजय हो। हमें अनुशासित जन होना है, न कि अपनी भावनाओं के द्वारा जीवन जीना है और भावनाओं के दास बनना है। हम सब अपनी भावनाओं के वश में होते हैं। यही कारण है कि मनुष्य गरीबों के, भूखों और अनाथों के चित्र देखकर पसीज जाता है। परंतु विश्वासियों को भावनाओं के वश में नहीं रहना है। जी हाँ, हमारी भावनाएं हम पर प्रभुता न करने पाए। हमें अनुशासन में रहना है और उसके अनुसार चलना है। यह भय के प्रसंग में कैसे होगा? क्या मुझे रेल यात्रा से डरना उचित नहीं है? जी नहीं, मेरे लिए घर पर बैठना उचित नहीं है। यदि मैं अनुशासित हूं तो मुझे साहस करके टिकट लेना है, और यहां तक कि न केवल रेल यात्रा परंतु हवाई यात्रा द्वारा भी सभा के लिए जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भ्रमणशील शिक्षा देने के लिए बुलाया है। भावनाओं के वशीभूत होने का अर्थ है कि जो आपको करना है उसे आप भावनाओं के कारण न करें। तिमोथियस को दिए गए प्रोत्साहन से मुझे बहुत सहायता मिलती है। पौलुस कहता है कि मैं एक कायर विश्वासी नहीं हूं, मुझे अपनी भावनाओं के वशीभूत नहीं होना है। मेरे प्रियो, मैं मिस्र जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वहां मुझे बहुत बुरा अनुभव मिल सकता है। मैं इस अनुभव के कारण अत्यधिक भावनात्मक हूं, क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि कैरो अच्छा नहीं लगता है। मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपनी भावनाओं पर विजय प्रदान की है। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वह समय से पूर्व यरूशलेम जा करके विश्राम करना चाहता था, परंतु वहां प्रत्येक होटल भरे हुए थे। तब उस मित्र ने कहा कि उसके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, अर्थात वह फिर से कैरो शहर की ओर चला गया क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे अपनी भावनाओं पर विजय प्रदान की, जिसके लिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इस बार वह वहां जाना आनंददायक था और उसने बहुत कुछ सीखा भी। मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमें विभिन्न तरीके से अपने भय पर विजय प्रदान करता है। वह हमें सिखाता और समझाता है ताकि हम उसके उन वचनों को स्मरण करें जिसमें वह कहता है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। आइए अब हम आगे देखें, लज्जित नहीं परंतु कष्टों में सहभागी। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 1:8 में लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मेरे प्रियो, मैंने इस अंश को शीर्षक दिया है सुसमाचार के कष्ट, क्योंकि आज का मनुष्य सोचता है कि मसीही जीवन बड़ा आसान, सुलभ, मधुर और चमकता हुआ और खुश मिजाज है। हम में से अधिकांश जन सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता दोष नहीं देखता है, वह हमें फूलों की सेज पर रखेगा और हमारे मार्ग से सब कंकड़ पत्थर हटा देगा और हमें गंभीर हानि नहीं पहुंचाएगा। मुझे एक वकील ने किसी पिता की वसीयत का एक अंश भेजा जिसमें लिखा था, मैं अपने पुत्र के लिए जीविकोपार्जन का सौभाग्य छोड़ जाता हूँ। 25 वर्ष तक वह सोचता रहा कि यह सौभाग्य मेरा है। यह उसकी भूल थी। बहुत से मसीह जन सोचते हैं कि उनका स्वर्गीय पिता उनके लिए सब कुछ आसान कर देगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने तो स्पष्ट कह दिया था कि हमें परेशानियां उठानी पड़ेंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, निसंदेह विश्वासी महाक्लेश में नहीं होंगे, परंतु आप और मैं अपने अपने क्लेशों से गुजर रहे हैं। शमूएल रदरफोर्ड ने कहा था, यदि आप यहाँ परदेशी नहीं तो संसार के कुत्ते आप पर नहीं भौंकेंगे। प्रभु यीशु ने तो हमें पहले ही चिता दिया था कि संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:18 में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि एक मसीही जन होने के कारण आप जनमान्य हैं तो आपके साथ कोई समस्या है। जी हाँ, मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी संडे स्कूल के बच्चों के समान सोचते हैं। उसके शिक्षक ने पूछा, जॉनी, तुम्हें कौन सा दृष्टांत सबसे अच्छा लगता है? उस बच्चे ने उत्तर दिया, जिसमें सब आवारा गर्दी करके मछली पकड़ते हैं। जी नहीं मेरे मित्रों, मसीही जीवन फूलों की सेज नहीं है। हमें सुसमाचार के लिए दुख उठाना है। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। इसलिए नहीं कि हम कुछ हैं या हमने कुछ किया है या हमारे कामों के अनुसार नहीं है, परंतु उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। सुसमाचार में परमेश्वर का अद्भुत उद्देश्य जो युगों से छिपा हुआ था, अब पौलुस ने अनावृत किया है, उसे खोल दिया है। पुराने नियम में यह एक भेद की बात थी जो प्रकट नहीं थी, परंतु नए नियम में यह प्रकट हो चुकी है। जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर प्रकट हुआ। हमारे लिए यह योजना सदा से परमेश्वर के पास थी। दूसरा तिमुथियुस के पत्र 1:10 में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मित्रों, यह एक ऐसा पद है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लिखा है, जिसने मृत्यु का नाश किया, अर्थात उसने मृत्यु की प्रभुता को निष्प्रभाव कर दिया। मृत्यु उस पर विजय नहीं हो पाई। परमेश्वर की संतान के लिए मृत्यु का अर्थ सर्वथा भिन्न है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को निष्प्रभाव कर दिया। ध्यान रखें कि पौलुस यह पत्र बंदी गृह से लिख रहा है, जेल से लिख रहा है, और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। अतः परमेश्वर ने शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं किया है। पौलुस आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा है, जो अनंत मृत्यु अर्थात परमेश्वर से सदाकालीन वियोग है। प्रभु यीशु ने आत्मिक मृत्यु का नाश किया है कि पापी उस स्थान में ना हो कि अनंत समय तक परमेश्वर से अलग रहे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य के मध्य हमारा मध्यस्थ है, मीडिएटर है। परमेश्वर हमारे लिए किए गए प्रभु यीशु के कार्य से संतुष्ट हो गया है। अब प्रश्न यह है, क्या आप संतुष्ट हैं, या क्या आप अपने कर्मों द्वारा उद्धार पाने के प्रयास में हैं? मैं अपनी पूर्व कथित बात दोहराना चाहता हूं। मनुष्य सिद्ध आज्ञाकारिता द्वारा उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि वह आज्ञा पालन में सिद्ध नहीं है और नहीं हो सकता है। वह अपूर्ण आज्ञा पालन से उद्धार नहीं पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर को यह स्वीकार्य नहीं है। इस दुविधा का एक ही समाधान है, वह जो यह कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं आ सकता है। और इस कथन को प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में कहा है। इसलिए कोई भी उद्धार का दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 1:11 में लिखा है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। पौलुस कहता है कि वह प्रचारक है, अर्थात परमेश्वर के वचन का संदेश वाहक है। वह कहता है कि वह प्रेरित और उपदेशक भी है। प्रेरित होने के कारण उसे अनेक वरदान प्राप्त थे। मुझे शक है कि प्रेरितों के बाद से किसी भी मनुष्य को एक से अधिक वरदान प्राप्त है। मैंने ऐसे प्रचारकों से भी भेंट की है जो सोचते हैं कि वे गा सकते हैं, परंतु मेरा अनुभव यह है कि वे तो गा नहीं सकते हैं, या तो वे प्रचार नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वे एक ही काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमें दो या अधिक वरदान देगा, क्योंकि एक ही वरदान का अभ्यास कठिन होता है। अब हम आगे देखते हैं कि लज्जित नहीं आश्वस्त। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 1:12 में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस कहता है कि मैं लजाता नहीं। यद्यपि वह बंदी गृह में था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, वह मौत के निकट पहुंच रहा है, परंतु वह सुसमाचार से लजाता नहीं था। रोम की कलीसिया को पौलुस ने लिखा था, 1:16 में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और अब यहाँ दूसरा तिमुथियुस 1:8 में पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि वह भी ना लजाए। मेरे प्रियो, कभी कभी विश्वासी गवाही देने में पीछे हटते हैं, कभी कभी हमारा मुंह बंद ही रहता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर का अर्थ है कि पौलुस ने न्याय के दिन तक के लिए अपना विश्वास मसीह में सुरक्षित रखा हुआ था, या इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मुझ में अपनी धरोहर सुरक्षित रखी है। पौलुस के जीवन में परमेश्वर के वरदानों का भंडार होने के कारण वह संपूर्ण संसार का ऋणी था। मेरे मित्रों, आप और मैं ऋणी हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, मैं अपने ऋण ईमानदारी से चुकाता हूं। सच तो यह है कि आपने और मैंने अपने ऋण ईमानदारी से तब तक नहीं चुका दिए होंगे जब तक इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य सुसमाचार न सुन ले। वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरे प्रियो, यह जानना एक महान ढाढ़स की बात है कि हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो भी है सब उसके हाथों में है। दूसरा तीमुथियुस 1:13 में लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। खरी बातें धर्मशास्त्र के वचन प्रेरित वचन है। मैं परमेश्वर के वचन की शाब्दिक प्रेरणा पर विश्वास करता हूं और मेरे विचार में अन्य कोई भी दृष्टिकोण संतोषजनक नहीं है और निश्चय ही वह धर्मशास्त्र की अनिवार्यता को पूरी नहीं करती है। दूसरा तीमुथियुस 1:14 में लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मेरे मित्रों, यह देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मसीही जीवन केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जिया जा सकता है। पद 7 में पौलुस ने कहा है कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम आत्मा के फल हैं। गलातिया प्रदेश की कलिसियाओं के नाम पौलुस के पत्र में वह कहता है, गलातियों की पत्री 5 उसके 22-23 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1:15 में हम पढ़ते हैं, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलूस और हिर्मुगिनेस भी हैं। मेरे मित्रों, पौलुस अपने विश्वासघातियों के नाम को यहाँ पर देता है। 1 तीमुथियुस 1 में वह कुछ धर्म त्यागियों के विषय चर्चा करता है। ये ही वे लोग हैं, वे सब जो इस समय एशिया में हैं, पहले पौलुस के साथ रोम में थे। मैं विशेष करके आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म का त्याग कलीसिया के अंतिम दिनों का ही लक्षण नहीं है, यह तो कलीसिया के संपूर्ण इतिहास की घटना है। मेरे एक शिक्षक कहा करते थे, कलीसिया का इतिहास धर्म त्याग का इतिहास है, या वह कहते थे झूठी शिक्षाओं का इतिहास। यह कैसी सच बात है। दूसरा तीमुथियुस 1:16-18 में हम पढ़ते हैं, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का एक महान भक्त है। काश मैं उनेसिफुरुस होता, मैं हिर्मुगिनेस कभी नहीं होना चाहता। उनेसिफुरुस किसी व्यापार के संदर्भ में रोम में रहता था। वह अति व्यस्त था, परंतु फिर भी वह बंदी गृह में पौलुस से भेंट करने के लिए गया। यह कैसी उदारता की बात है। संभवतः पौलुस उसे मसीह में लाया था, और आप उस मनुष्य का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं जिसने आपको उद्धार का मार्ग दर्शाया हो। मेरे प्रियो, यह क्या ही आनंद की बात है कि जब एक भाई या बहन परमेश्वर की सत्यता को जान जाते हैं, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, और इस बात को हम यहाँ देख रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि हमने पौलुस के जीवन से देखा है कि वह बंदी गृह में रह करके भी परमेश्वर के निकटता में बना है और सुसमाचार के प्रति, अपने लोगों के प्रति चिंता करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जब तक हम हैं इस जहां।